दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ।
दीदी निर्मला, ओम शांति, आपका स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आज आप दृष्टि से सृष्टि इस प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित हैं। ओम शांति और एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति एरिक भाई, आज आप पूरे ब्राह्मण परिवार से स्वर्णिम युग के बारे में बात करेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम काफी समय से सत्ययुग के आने का इंतजार कर रहे हैं। कई वर्षों पहले घोषणा हुई थी कि सत्ययुग आ रहा है और हमें अब लग रहा है कि यह जल्दी ही आना चाहिए। इसीलिए हम आपसे सुनने के लिए आतुर हैं कि आपके सत्ययुग से संबंधित निजी अनुभव क्या हैं और आपकी शुरुआत के दिनों में जब आपके सामने सत्ययुग के बारे में जानकारी थी, तब से आपकी यात्रा कैसी रही है। क्या आपको साक्षात्कार हुए या ट्रांस में कोई दृश्य दिखाई दिए या और कोई प्रेरणा? आपका संबंध सत्ययुग से कैसा था, खास तौर में आपके ब्राह्मण जीवन की शुरुआत में? मेरे ब्राह्मण जीवन की शुरुआत में मुझे कोई साफ तस्वीर नहीं थी सत्ययुग की, केवल लक्ष्मी नारायण कैसे होंगे इसका स्पष्ट रूप पता था, क्योंकि उन दिनों कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के सुंदर चित्र थे। पर सतयुग की पूरी तस्वीर मुझे तब मिली जब मैं सतयुग के विषय में पहली अव्यक्त मुरली सुनी। मुझे कभी कोई विजन या साक्षात्कार नहीं हुए और ना ही मैं ज्यादा दृश्यों के माध्यम से कल्पना करती हूँ, पर बाबा की मुरली से मैंने साफ तरीके से चित्र बनाकर देख पाई कि कैसे सतयुग में शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिएंगे और फूलों के रूप में सुंदर सुंदर पहाड़ों को देख पाई। मैं देख पाई कि कैसे किसान आसानी से किसी भी चीज की खेती करेंगे और कैसे कोई मजदूरी या कोई पुरुषार्थ नहीं होगा वहाँ। मैं यह भी देख पाई कि कैसे लक्ष्मी नारायण अपनी दिनचर्या आसानी से करेंगे और फिर भी सभी के बीच में कितना प्यार और आनंद है। चिड़िया सुबह सुबह चहचहाकर सभी को जगाएंगी, कोई संगीत की जरूरत भी नहीं होगी वहाँ, क्योंकि पेड़ की पत्तियाँ हवा के झोंकों के साथ मिलकर इतनी मधुर ध्वनि करेंगी कि वह मनमोहक संगीत समान सुनाई देगा। सतयुग की दिनचर्या के विषय में मैं ज्यादा साफ चित्र बाबा की मुरलियों के अनुभव के आधार से ले पाई और फिर मैं मेडिटेशन के दौरान आसानी से अपने सामने सतयुग की कल्पना कर पाई। मुख्य तरीके से सतयुग के धारणाओं पर ध्यान और फोकस करते मैंने अपना लक्ष्य देवी देवता समान बनने का रखा और योग की शक्ति से प्रकृति को शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ किया। ज्ञान और योग की मदद से और लोगों की मदद करने का पुरुषार्थ किया, जिससे वह भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए और बदल पाए। आपने अव्यक्त मुरलियों के बारे में बताया और 1970 की मुरलियों में बाबा ने सतयुग की बातों को बारीकी से वर्णन किया है कि आम का रस कैसा होगा, विमान की गति कैसी होगी और हम स्कूल कैसे जाएंगे। पर ऐसा लगता है कि 1970 के बाद हमने सतयुग की बातों से हटकर सेवा में, धारणा में और खासकर संबंधों में रहने की धारणा, संचालन करने की धारणा, इन बातों में हम व्यस्त हो गए। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी हम ऐसे समय की तरफ जा रहे हैं जब हमें फिर से अपनी सोच इस दिशा में लगानी है कि हम ऐसी नई दुनिया कैसे निर्माण करें जो इस दुख और संघर्ष की दुनिया की जगह ले ले। क्या आपको लगता है कि पिछले 30-40 वर्षों में हमने उन्नति करी है? हाँ, हमें सचमुच ज्यादा समय नहीं मिला सत्यों की चीजों के बारे में सोचने के लिए, पर मैं समझती हूँ कि जब मैं इस पुरानी दुनिया से अनासक्त होने की बात करती हूँ, तब मैं खुद को और दूसरों को याद दिलाती हूँ कि आने वाले सतयुग में सभी चीजें अच्छे से अच्छी होंगी, तो मैं अब इस पूरी पुरानी दुनिया के आकर्षणों से क्यों प्रभावित हूँ? और मैं पाती हूँ कि इस समझ से पुरानी दुनिया से अनासक्त होना आसान हो जाता है। तो एक बार हमारी समझ में एक साफ तस्वीर बन जाती है कि कैसे देवी देवताएं गुण और विशेषताओं से भरपूर हैं और कैसे उनमें कोई विकार या अवगुण नहीं है, तो इस समझ से हमें उन समान बनने की प्रेरणा मिलती है। तो हमारे पुरुषार्थ में भी जब हमें साफ समझ मिलती है सतयुग की और देवी देवताओं के संस्कारों की, तो इसी से हमें बहुत मदद मिल सकती है अपने संस्कारों को भी और इसी दुनिया में बदलने की। और खासकर क्योंकि हमें यह भी जानते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सतयुग की समझ बहुत मददगार होगी अपनी रोजमर्रा के जीवन में और धारणाओं में। अच्छा, तो निर्मला दीदी, जब आप सतयुग के संस्कारों की बात करती हैं, तो खास तौर पे इस समय कौन से संस्कार आपको प्रेरणा दे रहे हैं ज्यादा ध्यान देने की और धारणा में लाने के लिए? मैं समझती हूँ कि हरेक को खुद से पूछना होगा कि स्वयं में कौन से संस्कारों की कमी है और दिव्य संस्कार कौन से हैं। शुरू से ही हमें चार्ट लिखने को कहा जाता कि खुद में दिव्य संस्कार कौन से हैं और खुद में विकार कौन से हैं, फिर हम उन विकारों पर कैसे जीत पाए और देवी संस्कारों को कैसे धारण करें, क्योंकि हम जानते हैं कि देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण निरहंकारी थे और 16 कलाओं से पूर्ण संपूर्ण थे। उनमें सारी मर्यादाएं थीं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और संपूर्ण अहिंसक थे। इसीलिए हमें सभी संस्कारों पर ध्यान देना होगा और जो भी देवी संस्कार की कमी है या जो भी विकार हैं, उन्हें खास ध्यान रखकर उन पर जीत पानी होगी। पर क्या कोई खास संस्कार है जो आप सतयुग के लिए जरूरी है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ संस्कार जैसे विश्व कल्याणकारी, जिसमें हम विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं, पर यह संगम युग का संस्कार है ना कि सतयुग का, क्योंकि सतयुग में हमें किसी के भी सेवा करने का इरादा नहीं होगा। तो इस तरह सतयुग के ऐसे कौन से संस्कार हैं जिन पर हमें अभी ध्यान देना है? मैं कहूँगी संतुष्टता, प्यार, हसमुख, मिठास, यह सारे गुण जो देवताओं के पास होते हैं, यह सारे गुण पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। पर मुख्य तौर पर मैं कहूँगी संतुष्टता, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम में कई इच्छाएं होती हैं, तो जब हमारे पास संतुष्टता होगी, मतलब सारे गुण और सारी शक्तियाँ होंगी और हम संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होने से हसमुख भी होंगे, तो इसी प्रकार से संतुष्टता मुख्य कहूंगी। और एक गुण है जो हम सब आप में देखते हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल और सरल हैं। तो आपके क्या विचार हैं इस प्रैक्टिकल बदलाव के बारे में जो होने वाला है सतयुग लाने के लिए? आपसे पुरानी दुनिया का बदलाव सतयुग में होते कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी ज्यादा ध्यान दुनिया की सेवा करने में दे रहे हैं और हम खुद की सेवा, खुद के बदलाव में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, खुद की सेवा में और दुनिया की सेवा में, ताकि हम में कोई गुणों की कमी ना हो और हम खुद को गौरवान्वित कर पाए और हमारे जरिए शिव बाबा को भी गौरवान्वित और प्रत्यक्ष कर पाए। तो मुख्य तौर पे मैं कहूँगी कि खुद की सेवा और योग शक्ति जरूरी है। हमारे पास ज्ञान है कि देवी देवताओं के गुण कैसे हैं, तो हम स्वयं की जांच करें, ध्यान दें और निश्चय से जल्द अपने चेहरे, चलन और कार्य से शिव बाबा को प्रत्यक्ष करें। या आप अपने सतयुग के स्टेटस या पदवी के बारे में भी कभी सोचती हैं कि आप कैसा ताज पहनेंगी या आपका विमान कैसा होगा इत्यादि? नहीं, मैं नहीं सोचती अपने भविष्य के स्टेटस के बारे में। मैं जानती हूँ कि मेरे पुरुषार्थ अनुसार बाबा मुझे भविष्य का स्टेटस और पदवी देंगे और मैं कभी भी अपने भविष्य के स्टेटस के प्रति कॉन्शियस नहीं हूँ। इस संगम युग में मैं केवल पुरुषार्थ करती हूँ और उसका फल भविष्य में मिलेगा। केवल दुनिया के की सेवा करती हूँ और मैं जानती हूँ कि उसका फल मुझे निश्चित ही मिलेगा। बाबा के पास हर चीज का रिकॉर्ड है और वह सब कुछ उपलब्ध कराएंगे मेरे पुरुषार्थ अनुसार। पर बाबा यह भी कहते हैं कि हमें उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है और ज्यादा ध्यान देकर प्रजा बनाने पर ध्यान देना है। पर क्या आप समझती हैं कि इस बात पर हमें ज्यादा नहीं सोचना है? हाँ, हम शायद इस बारे में ज्यादा न सोचें, पर फिर भी हमें ध्यान तो देना है और जांच भी करनी है कि किस गुण की कमी है और उस गुण को हम कैसे भरें, और जो भी विकार हैं उन पर ध्यान देकर विपरीत शक्ति का प्रयोग करते उन विकारों से मुक्ति पानी है। क्योंकि अगर मैं लालची हूँ तो स्वाभाविक ही मुझे संतुष्टता पर ध्यान देना होगा और अविनाशी खजाने की प्राप्ति पर ध्यान देना होगा, ना कि भौतिक चीजों के पीछे या नाम शान के पीछे या कोई अभी की पदवी के पीछे भागना होगा। सतयुग के आने के समय के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आप बाबा के साथ लंबे समय से हैं और आपने कई बार सुना है कि विनाश कभी भी हो सकता है, सतयुग बहुत ही जल्दी आने वाला है। मैंने बड़ों से सुना है कि शायद हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देने के लिए कभी कभी हमें कहा गया था कि सिर्फ कुछ सालों में सतयुग आने वाला है। आपके ब्राह्मण जीवन में आज यह बात क्या मायने रखती है? क्या आपको कभी यह इच्छा हुई है कि आप परिवर्तन के समय इसी शरीर में रहें, इसी डॉक्टर निर्मला के शरीर में? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ये परिवर्तन का समय देखें, या क्या आप परिवर्तन के समय इसी शरीर में होंगी? क्योंकि मुझे याद है एक बार दादी जी ने पूछा था कि परिवर्तन के समय तुम कहाँ होंगे, तब मैं चुप थी। फिर दादी बोले, मैं तो वहाँ रहूँगी जहाँ बाबा चाहेगा कि मैं रहूँ। तो एक समय मुझे ऐसी इच्छा थी कि परिवर्तन के समय मैं इंडिया में रहूँ, पर वह तो इच्छा पहले ही पूरी हो गई, परिवर्तन के पहले ही। मुझे याद है कि 76-78 से मैं लोगों को कहती कि बस दो साल और, और ब्राह्मण हंसते। पर अब मैं कहती हूँ कि अभी भी ब्राह्मण बाबा की उम्मीद के अनुसार तैयार नहीं है, जिसके लिए कुछ साल और लग जाएं। आपने अभी भी साल नहीं बताए और बस कुछ साल और कहा, तो ऐसा क्या, ऐसी क्या कमी है जो हम अभी भी कर नहीं पा रहे हैं? क्या और 30-40 वर्ष और लग सकते हैं? अभी इस समय कोई मुझे पूछे तो मैं कहूंगी कि 10 साल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि विनाश होने की संभावना बढ़ रही है। प्राकृतिक आपदाएं, ग्रह युद्ध, बम विस्फोट, आतंक, यह सब देखकर मैं नहीं कहूंगी कि 30 साल हैं, पर बात ऐसी है कि मैं देखती हूँ कि कई ब्राह्मण काफी सुस्त और ढीले पड़ गए हैं, खास तौर पे इंडियन ब्राह्मण को देखती हूँ कि ब्राह्मण काफी ढीले हैं। वह सेवा सेवा में इतना लगे हैं कि स्व परिवर्तन को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए ज्यादा समय लग रहा है। हम बाबा का संदेश देने की कोशिश करते हैं, पर अभी तक ब्रह्म कुमारी या शिवानी बहन का नाम ही प्रसिद्ध हुआ है, शिव बाबा का नहीं। तो मुझे लगता है कि हम इस बात में ढीले पड़ रहे हैं। तो शायद बाबा का नाम बाला करना होगा, ना केवल टीवी प्रोग्राम से या पब्लिक प्रोग्राम से, पर खुद की स्थिति से और खुद के स्व परिवर्तन से। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कम से कम हमारे पास सतयुग की आबादी तैयार होनी चाहिए विनाश के पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि सब नंबरवार हैं और सभी का पुरुषार्थ भी नंबरवार है, तो हम केवल अपने पुरुषार्थ से ही यह पाएंगे। तो अगर हमारे पास 1 मिलियन ब्राह्मण हैं इस समय, जो सतयुग की शुरुआत करने के लिए काफी हैं, पर सतयुग को शुरू करने में जो 900 हजार ब्राह्मणों की स्टेज और स्थिति तैयार होनी चाहिए वह नहीं है। मुझे लगता है कि 900 हजार ब्राह्मण तो हैं, पर वह अपनी अच्छी स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कितने सारे ब्राह्मणों में कितने सारे गुणों की कमी है। अच्छा, तो अभी भी बहुत काम करना बाकी है और हम आपसे भरोसा रखते हैं कि आप हम सभी की स्टेज ठीक करने में हमें मार्गदर्शन देंगे, और शायद इंडिया में होते हुए भी आपको काफी काम करने की जरूरत होगी। हाँ, हमें काफी काम करना होगा खुद का और बाबा का नाम बाला निशीन करने के लिए, और मुझे यकीन है कि समय भी हमें पुरुषार्थ करने में धक्का देगा। हाँ दीदी, समय भी एक कारक है। हम आपके साथ और बातें करना चाहते हैं, पर समय को देखते क्या हम आपसे आपके अंतिम विचार और मनन चिंतन एक मेडिटेशन के रूप में करें और आपके साथ सतयुग के अनुभव की यात्रा पर कुछ मिनटों के लिए चलें।
ओम शांति।
ओम शांति।
Sit in silence.
चलो हम कुछ देर मौन में बैठें और उसी समय अपने मन को इस भौतिक दुनिया से दूर सूक्ष्म वतन में ले चलें। फिर हम ब्रह्मापुरी से गुजरते हुए विष्णुपुरी में पहुंचे। विष्णुपुरी जो हमें सतयुग की याद दिलाती है, मैं देवी देवताओं को चलते घूमते देख रही हूँ, बड़े प्यार से, शांति से, खुशी से, और हर कोई एक दूसरे से बहुत प्यार से बातचीत कर रहे हैं। फिर मैं महलों में जाती हूँ, जो सोने के बने हैं, हीरों से जड़े हैं, नैसर्गिक प्रकाश, सुंदर, साफ, इस महल से फिर मैं बगीचे की ओर सैर करने निकलती हूँ। बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल हैं, खुशबूदार, बहुत ही मनमोहक। उस बगीचे में झरना देखती हूँ जिससे साफ पानी बह रहा है। फिर मैं बाहर जाती हूँ, वहाँ एरोप्लेन या विमान या हेलीकॉप्टर गेट के बाहर खड़ा है। मैं विमान के अंदर बैठकर आसपास घूमती हूँ। उस विमान से मैं किसानों को खुशी से अपनी खेती करते देखती हूँ। मौसम भी वसंत ऋतु की तरह सुहाना है। फिर मैं और आगे पहाड़ों को देखने जाती हूँ जो अनेक प्रकार के आकारों के हैं। कुछ पहाड़ फूलों के पहाड़ हैं, आसपास कुछ और विमान भी नजर आते हैं जिसमें बाकी देवी देवता दोस्त घूम रहे हैं। बहुत ही सुहाना दृश्य है। विमान को भी नियंत्रण में करने की जरूरत नहीं है, बस मन की शक्ति से विमान चलता है। घूमते घूमते मैं अपने महल में लौटती हूँ। अपना विमान दरवाजे के बाहर छोड़कर मैं महल के अंदर घुसती हूँ। वहाँ मैं अपने परिवार को देखती हूँ। सेवाधारी भी अपना कार्य बहुत ही शांति से कर रहे हैं। उन्हें एक बार निर्देशन देने के बाद वह अपना कार्य बड़ी कुशलता से करते हैं। बहुत ही सुंदर जीवन है। अपने विष्णुपुरी की सैर पूरी करके मैं संगम युग पर लौटती हूँ। फिर मैं इस भौतिक दुनिया और रोजमर्रा की दुनिया में लौटती हूँ, और लौटने पर भी मैं विष्णुपुरी की सैर का अनुभव, सतयुग का अनुभव, उसी अनुसार मैं अपनी बातचीत से इस संगम युगी जीवन का अपने दिव्य भाई और बहनों के साथ आनंद लेती हूँ।
शांति।